एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार। अब हमारी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने टेनिस की दुनिया में, आप कह सकती हैं, एक क्रांति ला दी, आंद्रे अगासी
जी।
और हमारी चर्चा का आधार है उनकी बहुत ही बेबाक और ईमानदार आत्मकथा ओपन।
बिल्कुल, आंद्रे अगासी वो सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी नहीं थे, वो एक फेनोमेनॉन थे, एक जमाने के स्टाइल आइकॉन, एक विद्रोही और फिर बाद में एक प्रेरणा।
हाँ, वो 8 ग्रैंड स्लैम खिताब, करियर ग्रैंड स्लैम, ओलंपिक गोल्ड।
जी हाँ, दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी। मतलब उपलब्धियां तो हैं ही, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये किताब ओपन हमें उस पर्दे के पीछे ले जाती है,
सही।
उस चमक दमक के नीचे जो संघर्ष था, जो विरोधाभास था, उसको सामने लाती है।
और मुझे लगता है यही विरोधाभास इस कहानी को इतना असरदार बनाता है ना।
बिल्कुल
मतलब सोचिए कि कोई खिलाड़ी जो अपने खेल के शिखर पर है,
जी,
जिसे दुनिया पूज रही है, वो अंदर से असल में उसी खेल से नफरत करता है।
बिल्कुल, जिसने उसे सब कुछ दिया उसी से नफरत।
ये बाहरी सफलता और अंदर की जो कश्मकश है उसकी एक असाधारण कहानी है।
और इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। ये सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ बाहरी कामयाबी ही सब कुछ है,
सही कहा।
और दूसरों की उम्मीदों का बोझ वो कितना भारी हो सकता है, और अपनी असलियत को पाना, प्रामाणिकता, ये कितना जरूरी है। तो चलिए अगासी की इस यात्रा को थोड़ा और खोलते हैं।
जरूर। तो कहानी शुरू होती है लास वेगास में। उनके पिता माइक अगासी ईरान से आए थे, पहले बॉक्सर थे।
जी, ओलंपिक बॉक्सर।
हाँ, और उनके दिमाग में बस एक ही जुनून था, बेटे आंद्रे को दुनिया का नंबर वन टेनिस खिलाड़ी बनाना।
और जुनून भी कैसा, उन्होंने घर के पिछवाड़े में ही एक टेनिस कोर्ट बना दिया था और वहां एक बॉल मशीन थी।
वो ड्रैगन।
हाँ, ड्रैगन, जिसे उन्होंने खुद और खतरनाक बना दिया था। वो मशीन घंटों तक, मतलब हजारों गेंदें रोज तेज रफ्तार से नन्हे आंद्रे पर फेंकती थी।
उफ़।
इसी ट्रेनिंग ने उन्हें वो असाधारण हुनर तो दिया, लेकिन साथ ही टेनिस के लिए गहरी नफरत भी पैदा कर दी। वो पिता का सपना था जो बेटे पर, कह सकते हैं, थोप दिया गया था।
यहीं से वो विरोधाभास शुरू हो जाता है, जबरदस्त हुनर और उतनी ही जबरदस्त नफरत।
बिल्कुल। फिर 13 साल की उम्र में उन्हें फ्लोरिडा भेज दिया गया, निक बुलेटियरी की मशहूर टेनिस एकेडमी में।
जिसे अगासी ने अपनी किताब में जेल जैसा बताया है।
हाँ, या यातना शिविर। वहीं उनका वो विद्रोही रूप और खुलकर सामने आया। वो लंबे बाल, अजीब हेयर स्टाइल, रंगीन कपड़े,
वो सब शायद एक तरह की प्रतिक्रिया थी उस नियंत्रण के खिलाफ।
लगता तो यही है, जो नियंत्रण उनकी जिंदगी पर बचपन से हावी था। लेकिन देखिए विडंबना, वो उस एकेडमी से, उस माहौल से नफरत करते थे, मगर ये भी जानते थे कि वहां से निकलने का रास्ता भी टेनिस ही है, सफल होना ही पड़ेगा।
एक तरह की मजबूरी बन गई थी।
हाँ बिल्कुल, आजादी पाने का जरिया। और इसी कश्मकश के बीच सिर्फ 16 साल की उम्र में वो प्रोफेशनल बन गए।
और फिर आया वो दौर जिसे लोग इमेज इज एवरीथिंग कहते हैं, वो लंबे बाल जो बाद में पता चला विग थे।
हाँ, डेनिम शॉर्ट्स, वो भड़कीले नियॉन रंग,
उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही अलग था ये सब।
बिल्कुल। और ये सब, जैसा अगासी खुद कहते हैं, अंदर की जो असुरक्षा थी, जो दबाव था, उसे छिपाने का एक तरीका था।
और शुरुआती ग्रैंड स्लैम फाइनल में जब वो हारे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टाइल ज्यादा है, दम कम है।
जी, लेकिन फिर 1992 में विंबलडन जीत हुई। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, उसने साबित किया कि वो बड़े मंच पर जीत सकते हैं।
लेकिन वो खुशी से ज्यादा राहत थी, है ना।
हाँ, उन्होंने यही लिखा है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और यही हमें पहली बार ये एहसास होता है कि शायद बाहरी सफलता अंदर के खालीपन को नहीं भर पा रही थी। इसके बाद US ओपन जीता 94 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 95 में, नंबर वन भी बने, पर वो अंदरूनी शांति, वो अभी भी गायब थी।
और फिर 1997 आते आते वो गिरावट का दौर शुरू हुआ।
हाँ, वो बहुत बुरा दौर था। रैंकिंग गिरकर 141 पर आ गई।
एक पूर्व नंबर वन के लिए 141।
सोचिए जरा, चोटें थीं, ब्रुक शील्ड्स के साथ उनकी शादी टूट गई, और फिर वो चौंकाने वाला खुलासा किताब में, क्रिस्टल मिथ का सेवन।
हाँ, और फिर डोप टेस्ट में पकड़े जाने पर झूठ बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, ये उनके जीवन का शायद सबसे निचला बिंदु था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा घना होता है तभी सुबह होती है। यहीं से उनका पुनर्जन्म शुरू हुआ।
उन्होंने अपनी टीम बदली?
हाँ, कोच ब्रैड गिलबर्ट आए जिन्होंने उन्हें सिखाया कि हमेशा सुंदर खेलकर नहीं जीता जाता, कभी कभी बदसूरती से जीतना पड़ता है, विनिंग अगली।
और ट्रेनर गिलरेस?
गिलरेस वो सिर्फ ट्रेनर नहीं थे, वो एक पिता की तरह बने, एक मेंटर, एक भावनात्मक सहारा, उनका रोल बहुत अहम था।
और उन्होंने वापसी के लिए छोटे चैलेंजर टूर्नामेंट खेले?
जी हाँ, बिल्कुल जमीन से शुरुआत की, गुमनाम टूर्नामेंट्स में खेलकर रैंकिंग अंक और आत्मविश्वास वापस पाया। इसमें बहुत विनम्रता चाहिए होती है।
और इस वापसी का शिखर था 1999 का फ्रेंच ओपन फाइनल।
क्या कमाल का मैच था वो, दो सेट से पीछे थे।
हाँ।
और फिर वापसी करके खिताब जीता और इसी जीत के साथ करियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा किया।
ये जीत उन्हें पहले की जीतों से ज्यादा मायने रखती थी।
हाँ, क्योंकि ये उनकी अपनी शर्तों पर थी, अपनी इच्छा शक्ति से हासिल की गई थी। इसमें वो पहले वाली राहत नहीं थी, इसमें सच्ची संतुष्टि थी।
बाद के सालों में निजी जीवन में भी ठहराव आया, स्टेफी ग्राफ से शादी, बच्चे।
जी, उन्हें वो भावनात्मक स्थिरता मिली जिसकी शायद उन्हें हमेशा तलाश थी। और फिर मिला एक नया मकसद,
उनका फाउंडेशन और वो स्कूल।
हाँ, लास वेगास में वंचित बच्चों के लिए स्कूल खोलना। अब टेनिस वो नफरत की चीज नहीं रही,
वो एक जरिया बन गया।
बिल्कुल, उस नेक काम के लिए, उन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने का जरिया। इसने उनके खेल को एक नया अर्थ दिया। शायद पहली बार वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे,
एक बड़े मकसद के लिए खेल रहे थे।
हाँ, और इसने उन्हें करियर के आखिर तक खेलने की प्रेरणा दी।
और फिर 2006 यूएस ओपन में वो विदाई, कमर में भयानक दर्द के बावजूद खेलना, और मैच हारने के बाद वो न्यूयॉर्क की भीड़ का स्टैंडिंग ओवेशन, वो बहुत भावुक पल था।
वाकई एक ऐसी यात्रा का अंत जो नफरत से शुरू हुई थी और शांति और उद्देश्य पर खत्म हुई।
ये जो शांति उन्हें मिली, ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये उनके बदलते जीवन दर्शन को दिखाता है, है ना?
बिल्कुल, अगर हम उनके मूल दर्शन की बात करें तो वो समय के साथ बहुत बदला। शुरुआत में तो जीवन जैसे बाहरी दबावों से चल रहा था, पिता की उम्मीदें और उनके खिलाफ एक तरह का विद्रोह।
हाँ, वो रिएक्ट कर रहे थे, चुन नहीं रहे थे।
सही कहा, लेकिन धीरे धीरे, खासकर वो जो 1997 की गिरावट थी और उसके बाद की वापसी, उस दौरान ये दर्शन बदला। अब ये आत्म स्वीकृति की तरफ गया, अपनी असलियत को अपनाने और एक गहरे मकसद की तलाश की ओर।
मतलब बाहरी शोर से हटकर अंदर की आवाज सुनना शुरू किया।
हाँ, कह सकते हैं। और इसी के साथ सफलता की परिभाषा भी बदल गई। पहले सफलता मतलब खिताब, रैंकिंग, शोहरत, सब बाहरी।
और बाद में?
बाद में सफलता का मतलब बना अंदरूनी संतोष, अच्छे रिश्ते जैसे स्टेफी ग्राफ या गिलरेस के साथ, और समाज को कुछ देना जैसे उनका स्कूल। ये बहुत बड़ा फर्क है।
और असफलता को उन्होंने कैसे लिया? वो तो अंत भी हो सकता था।
हाँ, हो सकता था, लेकिन उनके लिए असफलता, खासकर वो 1997 वाली, वो एक मोड़ बनी। वो उनकी सबसे बड़ी वापसी का कारण बनी। उसने उन्हें सब कुछ फिर से अपनी शर्तों पर लिखने का मौका दिया।
और उद्देश्य की खोज, उसने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया।
हाँ बिल्कुल, जब वो स्कूल के रूप में अपना क्यों मिला ना, तो टेनिस खेलने का क्या और कैसे, वो अपने आप में सार्थक हो गया। वो बोझ नहीं रहा, वो एक जरिया बन गया।
अगर हम उनके मूल्यों की बात करें तो ईमानदारी साफ दिखती, खासकर किताब में।
बहुत ज्यादा, जिस तरह उन्होंने अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां मानी हैं, वो हिम्मत का काम है। दूसरा, वो लचीलापन, बार बार गिरकर उठना।
तीसरा, सहारे का महत्व, गिलरेस जैसे लोग।
हाँ, और चौथा, वो समाज के प्रति जिम्मेदारी जो स्कूल में दिखती है।
तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि उनका जीवन दर्शन सिर्फ खेल तक नहीं था, बल्कि समय के साथ गहरा हुआ।
बिल्कुल,
और इस विकास को समझने के लिए उनकी जीवन के कुछ खास मोड़ देखना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, अगर हमें तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो तो पहला कौन सा मानेंगे आप?
मेरे ख्याल से पहला तो 1992 की वो विंबलडन जीत ही होगी। उसने दुनिया को और शायद खुद अगासी को भी यकीन दिलाया कि हाँ, वो जीत सकते हैं सबसे बड़े मंच पर।
पिता की उम्मीद पूरी हुई।
हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, वो खुशी से ज्यादा राहत थी।
और शायद इसीलिए वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कुछ और सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल सही, वो जीत अहम थी क्योंकि उसने इस सच को उजागर किया कि शिखर पर पहुंचना भी अंदरूनी खालीपन को नहीं भरता। वो राहत वाला एहसास, उसने शायद अगासी के मन में ये सवाल पैदा किया होगा कि अगर मंजिल यही है तो वो सुकून कहाँ है जिसकी तलाश है।
दूसरा मोड़ तो शायद ज्यादा स्पष्ट है, 1997 की वो गिरावट।
हाँ, निश्चित रूप से, 141वीं रैंक, निजी समस्याएं, ड्रग्स, झूठ, सब कुछ जैसे बिखर रहा था।
ये सिर्फ एक बुरा दौर था या उससे ज्यादा कुछ?
ये सिर्फ बुरा दौर नहीं था, ये एक चौराहा था। इस सबसे निचले पॉइंट ने उन्हें आईना दिखाया। उन्हें तय करना पड़ा क्या वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे या पहली बार सच में अपने करियर की बागडोर अपने हाथ में लेंगे।
एक तरह से आत्म जागरूकता का पल।
हाँ, एक कठोर लेकिन जरूरी पल जिसने उनकी वापसी की जमीन तैयार की।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
मेरे लिए तीसरा और शायद सबसे ज्यादा बदलने वाला मोड़ था अपने स्कूल की स्थापना, शिक्षा के जरिए एक उद्देश्य खोजना।
ये वो पल था जब टेनिस बोझ से साधन बन गया।
बिल्कुल, एक ऐसा जरिया जिससे वो उन बच्चों की मदद कर सकते थे जिनकी शिक्षा की अनदेखी हुई थी, कुछ वैसी ही जैसे उन्हें लगता था कि उनकी अपनी शिक्षा की हुई थी।
इसने उनके खेल को, उनके जीवन को एक नया अर्थ दे दिया।
हाँ, एक ऐसी वजह दी जो जीत हार से बहुत बड़ी थी। इसने उन्हें वो शांति दी जो शायद नंबर वन बनकर भी नहीं मिली थी। इसने नफरत को उद्देश्य में बदल दिया।
अगासी की कहानी सिर्फ एक महान खिलाड़ी की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए बहुत गहरे सबक हैं। पहला तो ये, दूसरों की उम्मीदों का बोझ लेकर जीना।
हाँ, खासकर माता पिता की, ये संघर्ष बहुत आम है।
बिल्कुल, और दूसरा वो बाहरी छवि और अंदर की सच्चाई का फासला। हम मशहूर लोगों को देखते हैं और सोचते हैं सब परफेक्ट है,
लेकिन अंदर क्या चल रहा है कौन जानता है। प्रसिद्धि अकेलेपन का इलाज नहीं है।
उनकी वापसी की कहानी वो अपने आप में एक सबक है कि गिरकर उठना मुमकिन है।
हाँ, लचीलापन, दूसरा मौका, हार ना मानना,
और ये सोचना कि सफलता सिर्फ खिताब या पैसे से नहीं नापी जाती।
सही कहा, अगासी ने सब पाया पर असली संतुष्टि उद्देश्य में मिली। ये बताता है कि असली खुशी क्या पाया में नहीं, क्यों जी रहे हैं में है।
और एक और बात, अपने दर्द को ताकत बनाना, जैसे उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा के मलाल को स्कूल बनाने के मिशन में बदल दिया।
बिल्कुल, अपनी कमी को अपना सबसे बड़ा योगदान बना दिया, ये कमाल की बात है।
ये प्रेरणा की जटिलता भी दिखाता है ना, कि नफरत भी आगे बढ़ा सकती है।
हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सोचना, पर उनके शुरुआती करियर में ऐसा हुआ। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि वो रास्ता टिकाऊ नहीं है। असली और स्थायी प्रेरणा सकारात्मक उद्देश्य से ही मिलती है।
तो इस सारी बातचीत के बाद अगर सुनने वालों के लिए तीन मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
ठीक है, तीन मुख्य निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये हो सकते हैं। पहला, एक भावनात्मक पहलू। बाहरी दुनिया में आप कितने भी सफल क्यों ना हो, अंदर का अकेलापन और मनोवैज्ञानिक बोझ बहुत गहरा हो सकता है, खासकर तब जब रास्ता आपका अपना चुनावा ना हो। शोहरत और सफलता अंदरूनी संघर्ष को खत्म कर दें, ये जरूरी नहीं। दूसरा, एक बौद्धिक पहलू। किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए जुनून या प्यार हो ही। अगासी ने ये दिखाया, लेकिन जीवन में सच्चा संतोष पाने के लिए उस काम के पीछे एक व्यक्तिगत उद्देश्य, अपना क्यों, खोजना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैशन फॉलो करो वाली बात हमेशा काम नहीं करती, उद्देश्य ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
सही है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक। अपने अतीत के साथ अपने रिश्ते को बदलना हमेशा मुमकिन है। देर से ही सही, ईमानदारी से खुद का सामना करके, जिम्मेदारी लेकर और एक मकसद खोजकर हम अपने बोझ को भी योगदान में बदल सकते हैं। हमारा अतीत हमें बनाता जरूर है, पर वो हमारी नियति तय करे ये जरूरी नहीं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।